उनके घर का कोई स्वजन खो जाता है गुमशुदा, तो निकालते हैं वो कहाँ गया, उसका फोटो ये है, उसका स्वभाव ये है, कोई बतावे तो उसको इनाम देंगे। इस प्रसंग में मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक बार मैं जाता था एक जगह, ह्यूस्टन नगर है अमेरिका में, तो वहाँ एक डॉक्टर हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, धिंगरा जी पंजाब के हैं। उनके घर पर रहता था तो एक कुत्ता रखे थे वे, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कुत्ता रखे। मैंने एक बार एक दो बार कह दिया कि ये क्या रखे हैं आप। तब तक अकस्मात उनका कुत्ता एक दिन घर से निकल गया और पता ही नहीं लगा कहाँ गया। जब मैं भारत में था तब की बात है, वहां जब गया तो देखा वे एक पंपलेट छापे हैं, उसमें लिखा गया था हमारे कुत्ते का ये रंग है, ये रूप है, ये है, वो है, और उसको कोई बता देगा कि कहाँ है तो उसको $1,000 देने के लिए। वो अभी भी पंपलेट पड़ा ही होगा, न्यूज़पेपर में दिया गया था और जगह दिया गया था, और बहुत खिन्न थे। लेकिन मैं गया तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता था उसमें। बेचारे वियोग में है उसके, और क्यों कहूं। तो चला गया, नहीं ही मिला। लेकिन श्री कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, बिना कहीं किसी के पूछे ताछे जान गए। सर्वम विधि कृतम, सब ब्रह्मा का किया हुआ। तो जब विधि किया है तब निषेध क्यों करें, चुपचाप छोड़ दिए। ततः कृष्णो मुदम कर्तुं तन्मात्रीणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृभिस्वरः। श्री कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी विशेषण देते जा रहे हैं, विश्ववित पिछले श्लोक में दिए, अब कह रहे हैं विश्वकृत ईश्वर, जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं उन सब के ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। मतलब सबसे बड़े क्रिएटर सब कुछ कृष्ण हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये समझ लिया कि ब्रह्मा दोनों को चुरा कर ले गया है, तो भगवान उनकी माताओं का प्रिय करने के लिए, उनको मोद देने के लिए, और ब्रह्मा जी को भी मोद देने के लिए, ब्रह्मा का नाम है कस्य च, ब्रह्मा जी को भी आनंद देने के लिए, और उन बच्चों की और बछड़ों की माताओं को परम आनंद देने के लिए, उभयायितम आत्मानम चक्र, अपने को ही उन बछड़ों और बच्चों के रूप में कर लिए, बिल्कुल नया शेर, जैसे वे थे वैसे, स्वयं बछड़ा बन गए और स्वयं गोप सखा बन गए। और जैसा कपड़ा पहनते थे, जैसा स्वभाव था, जैसी टोपी लगाते थे, जैसा जैसी छड़ी रखे थे, बेड़ू सिंह, इसको पुनः सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं,
जावाद वात्सप वत्स कानक बपु, जावाद वात्सप वत्स काल्पक बपु, जावत करांध्याधिकं, यावत् जष्टि विषाण वेणुदलसि, यावत् विभूषाम्बरम्, यावत् शील गुणाभिधा कृतिवय, यावत् विहारादिकम्, सर्वं विष्णुमयं गिरंगवदज, सर्वस्वरूपो बभौ। जावद वत्सप वत्स काल्पक बपु, यह संख्या से भी तात्पर्य रखता है सब। जावत जितने बछड़े थे और जितने गोप सखा थे और जैसा उनका छोटा बड़ा शरीर था, जावत शब्द संख्यावाचक भी है, और उनका आकार, वे गोरे थे, सांवले थे, जैसा उनका स्वभाव था, जैसा कंठ स्वर था, बोली थी, अपनी माता से जैसे मिलते थे, सब कुछ बने भगवान। यावत वत्सप और वत्सक अल्पक बपुर,
जितने बछड़े थे, जैसे थे, जिस रंग के थे, हजारों हजारों प्रकार के बछड़े थे। कोई धवल थे, कोई काले थे, कोई काले धवल कई रंग के थे, कोई लाल थे। जैसे जैसे ये थे वैसे वैसे भगवान सब बन गए। और जैसा उनका छोटा बड़ा शरीर था, जावत करांग्रया बिकम, जैसा जैसा उनका हाथ पैर कान मुंह जो कुछ भी था उसी के अनुसार बने। जावत जस्ट विषाण वेणु दल से, वे जैसा छड़ी रखे थे, जिस रंग का, जिस आकार का, जितना लंबा, जितना मोटा छड़ी, उस तरह का बने सब। और जैसा विषाण वेणु और पत्ता का श्रृंगार किए थे वैसा, और छींका रखे थे अपने पास, यावत विभूषांबरम, जैसा गहना पहने थे, जैसा कपड़ा पहने थे, वैसा ही कपड़ा, वैसा ही गहना, वैसी ही जष्टि, विषाण वेणु दाल सिंह, और जावत छील गुणा वृद्धा कृति वयो, जैसा उनका शील था, गुण था, उनका जैसा नाम था, उनकी आकृति थी, जैसी उम्र थी, जावत विहार आदिकम, जैसे वे विहार करते थे, खेलने में, खाने में, कैसी उनकी रुचि थी माता पिता के साथ या भगवान के साथ। सर्वम विष्णुमयम गुरंग वध सर्व स्वरूप बहु, लगता था इस समय कि जैसे श्रुति कहती है कि सब कुछ विष्णुमय है, तो श्रुति गिरह आग अंगवत पूर्ण रूप में हो चुका है वेद वचन, सचमुच सब कुछ विष्णुमय, न तो जीवमयम, वहां कोई भी जीव नहीं था, केवल विष्णु। और छड़ी या सिंह, गमछा, टोपी, जो कुछ भी लगाए थे कमर में, कमर सूत्र, कटी सूत्र बांधे थे, या छींका लिए थे, जैसे उनका स्वभाव था माता से मिलने का, गाने का, हंसने का, या कुछ मांगने का, वैसा ही बन गए। और गोप तो बने ही, बछड़े भी वही बने, ठीक उस स्वभाव के। और बछड़ों के गर्दन में जो घुंघची बांधी गई थी और घुंघरू, और उनको जैसा वस्त्र उड़ाया जाता था, श्रृंगार किया गया था बछड़ों का, वो सब कुछ भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम, वहां विष्णु तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वैसे वेद कहता है इस जगत को कि विष्णुमय है, लेकिन वास्तव में यह जगत विष्णु की शक्ति का परिणाम है, यह भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति परिणत हुई है, परंतु उन बछड़ों के रूप में और बच्चों के रूप में स्वयं भगवान ही परिणत हो गए, परिणत नहीं हुए थे, उसे परिणत नहीं कहेंगे, भगवान स्वयं अपने को मैनिफेस्ट किए। यहां पर वेद वचन बिल्कुल सत्य दिख रहा था। अजह सर्व स्वरूप बभव, सब स्वरूप में होकर के अजन्मा श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे। एक बार जावत कह देने से काम चल सकता था, लेकिन प्रत्येक कर्म के पीछे जावत 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 क्यों लगाया जा रहा है? इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे थे वैसे सब कुछ, थोड़ा भी अंतर नहीं था। इसलिए एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी देखे, ध्यान दिए, आए ब्रज में, देखे तो वही बछड़े और वही बच्चे सब श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और ब्रज में जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहां से देख करके फिर जहां छिपाए थे वहां दौड़े, वहां से भाग करके सब आ गए, क्या है? तो वहां देखते हैं तो सब उनके द्वारा सुलाए गए हैं माया में, मतलब भगवान की शक्ति से ही ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं उनका। फिर वो देखते हैं कि सब वहां पड़े हुए, तो फिर हंस से बहुत तेज गति से आकर देखते हैं इधर, तो इधर भी वही। तो कौन सत्य है, कौन नवीन है, कौन डुप्लीकेट है, उनको कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि यहां जावत 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 जैसे सब कुछ था वैसे ही ब्रह्मा जी थोड़ा भी अंतर नहीं देखे। लेकिन वे बहुत चिंता में पड़ गए और लगे सोचने कि मैंने तो भगवान का बहुत बड़ा अपराध किया, ये किया, वो किया। उसी समय जितने बछड़े और बच्चे थे सब विष्णु रूप में दिखाई देने लगे उनको। उन्होंने साफ देखा कि कृष्ण ही इन सब के रूप में। ये लीला तो बाद में कही जाएगी कल, लेकिन यहां मैं यह संकेत कर रहा हूं कि यावत शब्द पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि थोड़ा भी अंतर नहीं था किसी भी विषय में, स्वभाव में, बोली में, या जो कुछ वो पहने थे, शरीर के आकार में, शरीर के वर्ण में, उनके केस या गहना, अंबर कपड़ा जो कुछ भी थे, सब भगवान बन गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस घटना को भी सुन करके श्री कृष्ण को भगवान न स्वीकार करे? क्या कोई है ऐसा समर्थ व्यक्ति जो उसका आदमी खो जाए और वो वही फिर बन जाए? खोया हुआ आदमी बन जाइए अगर शक्ति है तो, या जो अपने को भगवान कहता है उसको भी कहना चाहिए कि जरा अपने को दो रूप में एक्सपैंड करो। तो मार करके दूसरे जन्म में गधा बनेगा ना, लेकिन जीते जी अपने को दूसरा बना दे, पशु बना दे और मनुष्य बना दे और बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसा कोई है? कोई नहीं वास्तव में। और कोई भगवान ने अलग से प्रयास नहीं किया कोई प्रयोगशाला या मैन्युफैक्चर करने के लिए, या ऐसा नहीं कि उन्होंने जन्म दिया, वे सोचे कि ऐसा हो जाना चाहिए, हो गया। यह है भगवान की भगवत्ता, यह उनका स्वाभाविक विलास है ब्रज में। कोई प्रयास नहीं, ब्रह्मा जी से गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं है, उसकी मर्जी जो करना हो करे, हमारा जो काम है हम करें। बीवी है, पुत्र है, तो उसका अगर चोरी करने का ही काम है तब क्या करें, हम अपना काम देख। भगवान झगड़ा भी नहीं किए और बिल्कुल अपने को एक्सपैंड किए इस तरह से। सर्वम विष्णुमयम बहुत सुंदर शब्द है, यहाँ वास्तव में सब कुछ विष्णुमय है। गले की एक गुरिया घुंघची भी विष्णु, साक्षात श्री कृष्ण। और इस तरह से भगवान स्वयं ही ब्रज की घास भी चरे, साक्षात भगवान यहाँ की घास चरे। कितनी महिमा है इस ब्रज मंडल की। वास्तव में इन सब लीलाओं पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तब ब्रजमंडल की महिमा मन में धसती है। यह वह भूमि है जहाँ की घास पर ब्रह्म चरता है, भगवान चरते हैं, जहाँ की धूली में लौटते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और अपने को धन्य मानते हैं भगवान। तो यावत 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार यावत शब्द का प्रयोग किया गया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुः, यावत करांग्रहाधिकम, यावत जष्ट विषाण वेणु दल सिख, यावत विभूषाम्बरम, यावत छील गुणा भेदा कृति वयो, यावत विहाराधिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभू। ये जो गिरह वेद कहता है कि सर्वम विष्णुमयम, तो यह अंगवत हुआ, अंग से युक्त हुआ, मतलब पूरा। यहाँ यह सिद्ध हुई बात, वास्तव में सब कुछ विष्णुमय भगवान बन गए। तो चेतन चीजों में दो तत्व हैं, एक जीव तत्व और दूसरा विष्णु तत्व। तो यहाँ सब कुछ विष्णु तत्व है। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रतिवार्जात्म वत्स पही, क्रीड़न आत्म विहारैश्च सर्वात्म प्रविशद ब्रजम। और अब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, आज वे बच्चे नहीं हैं, आज सभी घरों में भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, बछड़े के रूप में और बच्चों के रूप में। यह है भगवान की सुंदर लीला। तो स्वयं आत्मात्म गोवत्स, जो स्वयं ही गोवत्स बने थे और गोपालक बने थे, वे भगवान अपने से अपने को घेर करके, इधर उधर से इकट्ठा करके, अपने से अपने को हाँक करके ले गए और ब्रज में प्रवेश किए। तो बछड़ा भी वही बने हैं और बच्चे भी वही बने हैं। और श्री कृष्ण रूप में सर्वांशी तो है ही, वो तो है ही, लेकिन और भी जो बच्चे थे वो अभी साक्षात कृष्ण थे। आकार भर वर्ण भर केवल उन बच्चों का था, जैसे श्रीदाम मधुमंगल मनसुख लेकिन आज सब केवल कृष्ण थे, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, बछड़े भी कृष्ण। क्रीणम आत्म विहार सर्वात्मा प्रायशत व्रजन, इस प्रकार अपने से अपने को विहार करते हो, जो विहार कर रहे थे, खेल कर रहे थे, वो सब भी कृष्ण ही था। बोलना, चलना, खेलना, कूदना और इस तरह से अपने को अपने से हंकते हुए ब्रज में गए। तत्तद् वत्सान् प्रथंगित्वा तत्तद् गोष्ठे प्रविनिवेश्य सह तत्तदात्मा भवद्राजं तत्तत् सद्म प्रविष्टवान् तत्तद् वत्सान् प्रथंगित्वा। और जिस घर के जो बछड़े थे उन बछड़ों को, मतलब अपने को ही, और अपने से लेकर के अलग अलग करके, भोजपुरी में एक बहुत अच्छा शब्द है हिगराना कहते, अपने अपने बछड़ों को हिगरा करके उन अपने को ही और अपने से तब तक गोष्ठे प्रविष्टवा, अलग अलग गोष्ठ में ले जा रहे हैं। तो शाम के समय कुछ गऊओं के आने से पहले की घटना है, गऊएं बिल्कुल शाम को आती थी और ये बछड़े लगभग 3-4 बजे लौट जाते थे, ये निकट चरते थे और जल्दी इनका पेट भर जाता था। तो गऊओं के आने से पहले पहले इनको आ जाना चाहिए, नहीं तो सब दौड़ दौड़ करके दूध पी जाते हैं गऊओं का, इसलिए इनको ला करके खिड़क में रखना था, बांधना था। आज का दिन अद्भुत था कि भगवान ही स्वयं अपने से अपने को ले जाकर के प्रवेश करा रहे हैं। तत्तद् गोष्ठे निवेश तत्तद् आत्मा भवत, तत्तद् आत्मा भवत, यहाँ आत्मा का अर्थ है प्रयास, यत्न, आत्मा शब्द का यत्न, धृति, बुद्धि आदि होता है। तद आत्मा अभवत का अर्थ है कि वह प्रयास करने लगे। तो कुछ बच्चे हैं जा करके बछड़े को खूंटे में बांध रहे हैं, चाहे वहां रखा हुआ घास डाल रहे हैं या माँ से मिल रहे हैं, जो भी कार्य था उसको आत्मा कहा जाएगा। यहाँ आयास, बच्चे ब्रज में पहुंच करके अपने अपने बछड़ों को घेर रहे थे, चाहे माँ से कहे कि माँ हम आ गए, तो और दूसरे लोग थे वे बछड़ों को बांध रहे थे, तो इसको आत्मा कहते हैं यहाँ पर। तत् तदात्मा भवद राजन तत्त सब में प्रविष्टवान, जो बच्चे जिस घर के थे, जैसे थे, जितने बछड़े थे, भगवान तो जो व्यक्ति, जो भगवान एक बछड़ा बन सकता है और सखा बन सकता है, तो क्या अलग अलग घरों में गिन गिन करके नहीं जा सकता है? कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई कि भगवान प्रवेश करने में फिर भूल जाए किसी के घर में दो चले जाए जबकि उस घर का एक लड़का था, नहीं, जैसे वे थे, जैसे प्रवेश करते थे, जैसे माँ के गोद में चढ़ जाते थे, वैसे गए और वैसे ही बोले, वैसे ही सब किए। उस दिन जो माताएं थी बच्चों की, उनका अनजान में ही अपने बच्चे के प्रति बहुत स्नेह उमड़ पड़ा। इसको वस्तु शक्ति कहते, भले भाव हो या न हो, मतलब जानकारी हो या न हो, मेरे कहने का आशय है, इंटेंशन हो या न हो, लेकिन आज जो घर में बच्चा आ रहा है वो साक्षात परब्रह्म है, वो भगवान आनंद का निधान। इसलिए आज का के बांसुरी में जो बच्चा पी पी करते बांसुरी बजाते हुए घर आ रहा था, तो वो बच्चा आज वो साधारण बच्चा नहीं था, वो साक्षात भगवान थे। इसलिए अनजान में ही आनंद का समुद्र उमड़ गया माताओं के हृदय में, तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तन मातरो बेणुरव त्वरोत्थिता उत्थाप्य दुर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नेह स्मृत स्तन्य पय सुधाशम मत्वा परम ब्रह्म सुतान पायन। तन मातर, उन बच्चों की माताएं अपने अपने बच्चे के वेणु स्वर को सुनकर उत्थिता उठ गई। आज का जो उनका उठना था वो दूसरे तरह का था, बहुत अधिक उमंग हो रहा है बच्चे से मिलने के लिए। वेणु रवत त्वरोत्थिता, वेणु के शब्द को सुनकर के त्वरा उत्थिता, त्वरया उत्थिता, तुरंत उठ गई। उत्थाप्य दुर्भी, और पहुंच करके घर से बाहर और बच्चे को दोनों हाथों से उठा करके अंक में ले ली। जबकि बच्चे इस समय में 5-5 वर्ष के हो गए हैं, परंतु आज के बच्चे श्री कृष्ण हैं, इसलिए अब स्तनों से दूध बहने लगा। ऐसी भी माताएं थी जिनके स्तनों से अब दूध नहीं आता था, लेकिन आज के दिन सूखे हुए स्तनों में भी दूध की धारा बहने लगी। ये भगवान के प्रति अज्ञात में ही एक आनंद का उद्रेक हो रहा है। उत्थाप्य दुर्भी परिरभ्य निर्भरम, निर्भरम का अर्थ है पूर्ण, चित्त भर नहीं रहा था, लालसा बनी रही और उठा करके अंक में लगा ली, हृदय से लगा ली। स्नेह स्मितस्तन पय सुधा समन, और स्नेह के कारण स्तन चुचुआने लगा, स्तन से दूध बहने लगा। कैसा दूध? सुधा समन, वास्तव में वह प्रेम का दूध था। सुधा समन अमृत था, और मत्वा परम ब्रह्म सुतान पायन, परम ब्रह्म पर ब्रह्म को अपना अपना पुत्र मानकर वे दूध पिलाने लगे। आज स्पेशल दूध पिलाना चालू किया और 1 वर्ष तक पिलाई। अच्छा किया ब्रह्मा जी, हर लिए तो वास्तव है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा किया, सभी माताओं का मनोरथ पूरा हुआ। वे चाहते थे कृष्ण हमारा स्तन पिए, हमारा पुत्र बने, तो भगवान ने उनके भक्ति का इस तरह आदर किया, स्नेह का आदर। तो परम ब्रह्म सुतान मत्वा स्नेहस्नुत स्तन्य पय सुधासवम अपायन, उस दूध की विशेषता दी जा रही है जो दूध भगवान पी रहे हैं अपनी माताओं के। तो स्नेहस्नुत स्तन पय सुधासवम, यह सुखदेव गोस्वामी उस दूध की महिमा कह रहे हैं। एक तो विशेषता है कि स्तन्य स्तन का दूध है, स्नेह से स्नुत हो रहा है। बताइए, जिन माताओं का स्तन का दूध है सूख चुका था, आज अकस्मात अपने आप स्तनों से दूध चू रहा है, और इस कारण से चूंकि भगवान के लिए वो दूध चू रहा है, तो वह दूध सुधासव था, अमृतास। यह सामान्य अमृत नहीं जो स्वर्ग में मिलता है, जिसको भगवान पिएंगे। दिन भर थके मांदे बछड़ा चरा करके आए हैं और वे पी रहे, तो अपायन ये पिलाने लगी। और इसके बाद जो उन माताओं को सौभाग्य भगवान ने दिया वो अद्भुत है, अनिर्वचनीय है वास्तव में। इसके बाद अपने अपने बच्चों को वे घर में ले जा करके और तेल लगाती हैं, उबटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, अलंकार रक्षा तिलक रक्षा करती हैं। एक रक्षा तिलक होता है काला लगा देना बच्चों के मुख में, जिससे कि नजर न लगे दूसरे। तो इस तरह से पर ब्रह्म को वे माताएं रक्षा तिलक लगाती थी कि बच्चा सुरक्षित रहे। जो सारे जगत का कर्ता धरता है, सबकी रक्षा करते हैं, सबका मंगल करते हैं, जिनका नाम संकीर्तन समस्त मंगलों का मूल है, उन भगवान की रक्षा करती थी, प्यार से सेवा करती थी, उसको सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं। ततो नृपुन्मर्दन मज्जले पनालंकार रक्षा तिलकाशनादि संलालितः स्वचरितै प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। माधवः श्री लक्ष्मीपति भी उन माताओं के द्वारा सेवा पाकर के अपने को धन्य मान रहे थे। और याम जमेना, याम का ऐसे अर्थ होता है प्रहर 3 घंटा, परंतु याम का एक अर्थ होता है सायंकाल से पहले की स्थिति, दोपहर और सायं के बीच की जो स्थिति है उसको याम कहते हैं। तो याम यमेना, यम का अर्थ है नियम, जो याम का नियम था, जो दोपहर के बाद जो घर लौटने का नियम था शाम से पहले, उसके अनुसार माधव प्रतिदिन घर में आते थे। और वे माताएं प्रतिदिन श्री कृष्ण को वैसे ही उठा लेती थी, मतलब अपने बच्चे को, और दूध पिलाती थी। प्रतिदिन वे बच्चे आकर दूध पीते थे, भगवान इस तरह से प्रेम के भूखे हैं, वे दूध पीते थे पहले। और इसके बाद उन्मर्दन, उन्मर्दन का अर्थ है जानते थे कि बच्चा थक गया है बछड़ा चरा करके, तो फिर वे साफ करती थी देह और वो सब पत्तों से जो श्रृंगार किया गया था उसको हटाती थी, धूल झाड़ती थी और इसके बाद तेल लगाती थी, उबटन लगाती थी और तब स्नान कराती थी। क्रम चाहे जो कुछ भी हो, पहले खिला करके करें या जैसे तैसे करें, ये दूध तो पिला ही दी तो अब तो स्नान कराना ठीक ही है। तो उन्मर्दन, तेल लगाना और इसके बाद मज्जा का अर्थ मज्जन कराना, स्नान कराना, खूब अच्छा से तेल उबटन लगा करके मांज मिस करके तब नहलाती थी। और नहलाने के बाद लेप, फिर चंदन का लेप करती थी, अंगराग लगाती थी शरीर पर और अलंकार धारण कराती थी। और रक्षा तिलक या रक्षा तिलक, दोनों अलग अलग शब्द भी हो सकता है, रक्षा करती थी। मतलब लोक के अनुसार भी रक्षा करती थी और वैदिक विधि से भी रक्षा करती थी। वैदिक विधि का अर्थ है किसी मंत्र से, विष्णु वैष्णव मंत्र से रक्षा करती थी, मंत्र पढ़ती थी भगवान तुम्हारी ऐसे रक्षा करे, ये रक्षा करे, बहुत चिंता में माता जी लोग रहती हैं। और लौकिक रक्षा करती थी वही काला तिलक करके, ये जैसे तैसे और भी कई उपाय लोक में अपने देखते हैं। हमने तो देखा है क्योंकि सब्जी के खेत में हड्डी लेकर रख देते हैं, पता नहीं क्या कि उसे उस सब्जी पर दूसरे की नजर नहीं पड़ेगी, हड्डी पर पड़ जाएगी तो वहीं उसकी कुदृष्टि समाप्त हो जाएगी। और नहीं तो खपड़ा हाड़ी ला करके टिक करके रख देते, देखा है आपने कहीं कहीं। ये लोक विधि है तो अलग अलग स्थान में अलग अलग होगा, ये वेद विधि नहीं है। काजल लगा देना, कहीं काजल आंख में लगाती हैं स्त्री बच्चों के, तो कहीं न कहीं इधर उधर लगा देती हैं कि कोई कुदृष्टि वाला उस काजल पर ही देखेगा और उसकी कुदृष्टि वहीं जाकर सोख जाएगी, अलग नहीं लगेगी, इसको रक्षा करना। कहने का आशय सुखदेव गोस्वामी का यह है कि बड़ी ही ममता से, हृदय के प्यार से माताएं अपने बच्चों की सेवा करती थी, रक्षा करती थी। और तिलक अस्नाद भी, और असन भोजन कराती थी बड़े स्नेह से। आदि भी, आदि का अर्थ प्रतिदिन सुलाना, गाना उनको, थपथपाना, गोद में लेकर के सोना, यह माताओं को भगवान ने सुख दिया। सन लालित, इन सबके द्वारा भगवान सम्यक लालित होते थे, एक वचन में यहाँ दिया गया, एक ही कृष्ण सब जगह लालित हो रहे थे। जबकि बच्चे असंख्य थे लेकिन उन बच्चों के रूप में कृष्ण थे, इसलिए एक वचन कहा जा रहा है, सन लालित सचरित प्रहर्षयन, और अपने चरित्र से माताओं को बहुत सुख दे रहे थे। जब वे माँ कहते होंगे कितना अच्छा लगता हो, श्री कृष्ण सबसे पहले यदि बोलना सीखे ब्रज में तो बाबा कहना सीखे और मैया कहना सीखे और भैया, बलराम जी को भैया कहना सीखे, नंद बाबा को बाबा और माँ को मैया, ये तीन शब्द वे सीख पाए बहुत रटाने के बाद। वेद वक्ता और ब्रह्मा जी के भी गुरु भगवान ये तीन शब्द पहले सीखे, सिखाया गया। सूरदास जी ने लिखा है, उनको तो याद बहुत पद नहीं है, लेकिन कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, नंद महर सो बाबा बाबा, अरहल धर सों भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहू ललारे दूर खेलन, जन जाहू ललारे मारे गी काहू की गैया कहन लगे, मोहन मैया मैया कहन लगे, मोहन मैया मैया गोप गोपिन ग्वाल गोपिन सब करत कतू कोलाहल, ग्वाल गोपिन सब करत कोलाहल घर घर बजत बधैया कहन लगे, मोहन मैया मैया सूरदास प्रभु ए दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणन की बलि जैया कहन लगे, मोहन मैया मैया कहन लगे, मोहन मैया मैया। और मैया मैया कहने से जसोदा कहती है मेरा बेटा बहुत सफल जीवन है, गूंगा नहीं होगा, बोलना सीख रहा है, इस तरह से बहुत प्रसन्न थी। तो ब्रज की समस्त श्री गोपी जनों को तो वात्सल्यमयी गोपियों को भगवान ने यह सुख दिया, वास्तव में पुत्र बन गए, तो वे सदा उनको स्नान कराने में, तेल लगाने में, खिलाने पिलाने, लालन पालन चुंबन सब तरह से सुखी करने में लगी रहती, संग लालित, यही लालन स्वीकार करने के लिए तो भगवान बने हुए हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कर सके थे, भगवान की वास्तव में है इच्छा थी अपने को इस तरह से करने की। तो सायम गतो याम जमीन माधव, सायम के समय पहुंचते थे और उस समय के जो नियम थे उसके अनुसार वे लालित होते थे और अपने चरित्रों से अपनी लीलाओं से माताओं को सुख देते थे और माताएं उनको सुख देती थी। माधव लक्ष्मीपति होकर भी भगवान अपने माताओं के इस स्नेह को स्वीकार करते थे। ये तो माताओं के सौभाग्य का वर्णन किया गया, अब गौओं का सौभाग्य देखिए कि उनके जो बछड़े आज आए हैं वे सब श्री कृष्ण हैं। गावस्ततो गोष्ठम उपेत सत्वरम हुंकार घोषयी परिहूत संगतान स्वकान स्वकान वत्सतरान पाययन मुहुर्लिहंत्यः श्रवदौध संपयः। गौएं गोष्ठम उपेत सत्वरम हुंकार घोषयी परिहूत संगतान, गौवे हुंकार करती हुई जा रही थी, जैसे गौवे बोलती हैं अपने बच्चे के लिए वैसे हुंकार करती हुई जा रही थी। आज उनके हृदय में अज्ञात रूप से ही एक अनिर्वचनीय स्नेह उमड़ रहा था, रोज की अपेक्षा अधिक स्नेह उमड़ रहा था। तो वे जा रही थी और जाने के बाद जब वे हुंकार करी तो उधर से परिहूत संगतान, उधर से बच्चों की आवाज आ रही थी। बछड़े आ चुके थे पहले से, तो वे बछड़े अपने माँ के स्नेह भरे शब्द का उत्तर देते थे, वे भी बोलते थे हुंकार करते थे। तो इस तरह से माँ का, गौओं का और भगवान का, बछड़ों का, दोनों का मेल किया। तो इस तरह से आकर के वे मिले बछड़े सब और स्वकान स्वकान वत्स तरान पायन, अपने अपने बच्चों को गौओं पिलाने लगी। वत्स तरान अपायन मुहुर लिहंत श्रवदौध संपयन, बार बार वे चाट रही थी, निरंतर बच्चों को चाट रही थी और श्रवद औध संपयन और अपने स्तन से बहते हुए दूध को पिलाने लगी। ऐसी भी गौएं उस समय थी जो एक साल के बाद की बात अभी की नहीं, जो बच्चे वाली हो गई, दूसरा बच्चा दी थी, लेकिन जो बच्चा वो दी थी उससे उतना प्रेम नहीं था जितना इस बच्चे से प्रेम उन गौओं का, ऐसा इस प्रसंग में आ रहा है। तो अपने अपने बच्चों को मुहुर लिहंत लेहन करने लगी, चाटने लगी और श्रवदौध संपयः अपायन पिलाने लगी। दूध को, जो अपने आप दूध चू रहा था उसको पिलाने लगी, चाट रहे थे, पिला रहे थे। इस प्रकार भगवान गौओं को सौभाग्य दे रहे हैं। उन गौओं का दूध तो वे अलग से पीते ही थे गोप सखा के रूप में, और डायरेक्ट बछड़ा बन करके पी रहे। यह है ब्रज का अद्भुत असमर्थ स्नेह। एक प्रश्न होता है कि क्या भगवान का पहले मातृभाव नहीं था गोपियों में, माताओं में, और माताओं का क्या अपने पुत्र जैसा स्नेह नहीं था कृष्ण में क्या? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, गो गोपीना मातृतास्मिन आसित स्नेह हर धिकाम बिना पूर्ववद आसपी हरे स्तोकता माया बिना। पहले भी था गोपियों का और गौओं का, पहले भी कृष्ण के प्रति स्नेह था, मातृता थी उनकी। मातृता का यह अर्थ है कि मैं माँ हूँ कृष्ण की, ये सभी गोपियों के मन में भाव था। जो वात्सल्य में गोपियां हैं उन सबके मन में ये था कि मैं कृष्ण की माँ हूँ, और गौओं के भी मन में था कि मैं कृष्ण की माँ हूँ, यह था। लेकिन स्नेह हर धिकाम बिना, लेकिन आज जो स्नेह बढ़ा हुआ है यह स्नेह की समृद्धि उस समय नहीं थी। कृष्ण में स्नेह था लेकिन ऐसा स्नेह नहीं था। कैसा स्नेह? कि कृष्ण खास मेरा पुत्र है और इस कारण से आज जो स्नेह बढ़ा है यह स्नेह नहीं था। यह स्नेह था लेकिन स्नेह की यह बाढ़ नहीं थी। आज तो श्री कृष्ण है और पुत्र का संबंध हो चुका है इसलिए स्नेह बढ़ा हुआ है। अगर भगवान का भी यह भाव था कि ये मेरी माँ है, पुरावत दासपी हरे स्तोकता माया बिना, हरे तोकता, तोक का अर्थ बच्चा, भगवान की ये भावना थी कि मैं इनका बच्चा हूँ, इनका पुत्र हूँ। गौओं का भी, गौओं के प्रति भी भगवान के भाव था कि ये गौ मेरी माँ है और ये वात्सल्यमयी गोपियां भी मेरी माँ है, ये भगवान का भाव था। लेकिन माया बिना, लेकिन माया के बिना था, माया के बिना था। इसका मतलब कि था मातृभाव लेकिन आज जो प्रगाढ़ है ममता हो रही है कि मेरी माँ है वो पहले नहीं था कृष्ण। था वो भी भाव लेकिन इतना पूरा नहीं था, कहने का आशय ये है। अब बहुत अधिक भाव बढ़ चुका है भगवान का कि ये मेरी माँ है, गौ हो चाहे वो माँ गोपी हो। पहले था लेकिन माया के बिना था, या माया का अर्थ है स्नेह ममता, मेरी माँ है। तो जब बछड़ा बन गए तब पूर्ण भाव हो गया कि मेरी माँ है, या बच्चा बन गए तो मेरी माँ है। तो इस तरह से पहले से ही श्री गोपियों का और गौओं का भाव था भगवान में कि यह मेरा पुत्र है, और भगवान का यह भाव था कि मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरी माँ है। नहीं, उनका ये भाव था गोपियों का, वात्सल्यमय गोपियों। सावधान रहना चाहिए हमेशा, गोपियां शब्द में कह रहा हूँ तो उससे मातृभाव वाली गोपियां समझना चाहिए। तो गोपियों का ये भाव था कि हम इसकी माँ है, मातृता थी लेकिन आज जो स्नेह की बाढ़ है वो नहीं। और भगवान की भी ये भावना थी कि मैं पुत्र हूँ इनका, लेकिन उतनी प्रगाढ़ ममता के साथ भगवान की भावना नहीं थी जो आज हो रही। ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक विशेष बात कह रहे हैं। तो ब्रजौ के श्याम स्वतो के सो स्नेह बल्याब्द मन वहम समेर निहसी में बबृधे जथा कृष्णे तो पूर्ववत। अब ये विशेष घटना हो रही है कि धीरे धीरे ब्रजवासियों का अपने पुत्र में भी उतना ही प्रेम बढ़ गया जितना कृष्ण में था। एक आश्चर्य की बात, अरे क्यों नहीं बढ़े, वो तो कृष्ण ही पुत्र बने हुए हैं तो क्यों नहीं कृष्ण जैसा प्रेम हो गया। और बलराम जी कब इस बात को जाने, जबकि प्रतिदिन वो भी चाहते थे बछड़ा चराने, वो भी आते थे। जब 5-6 दिन बच गया था साल बीतने में तो वो सोचे कि सब अपने अपने बच्चों से क्यों प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण तो परब्रह्म है, सुख के आनंद के आधार हैं। सबका प्रेम तो कृष्ण में था, कृष्ण में तो उस समय भी था, लेकिन कृष्ण के समान ही अपने अपने बच्चों में क्यों प्रेम बढ़ रहा है, वो विचार कर रहे थे। लेकिन भगवान ऐसा सम्मोहन डाले थे उनके ऊपर कि वे इतने दिनों तक नहीं जान पाए। भगवान नहीं चाहते थे कि वे जाने। और जब 5-6 दिन रह गया तो उन्होंने एक दिन कृष्ण से पूछा कि कृष्ण मैं बहुत आश्चर्य देख रहा हूं, ब्रजवासियों का और गौओं का अपने अपने बच्चों से तुम्हारे जैसा प्रेम क्यों बढ़ रहा है। तब भगवान हंसे और कहे कि मैं ही तो सब बना हूं। तब तो बलराम जी आश्चर्य हुए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो आप बाधा डाल देते, करते वो करते, इसलिए मैंने नहीं बताया, चाहे आप ब्रह्मा पर क्रोध करते इसलिए मैंने नहीं बताया। तो बलराम जी भी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु इतने दिन तक वे नहीं जाने, जबकि साथ में खेलते थे जाते थे। पर जब हद हो गई बात, सब अपने अपने बच्चों से ही प्रेम करते थे, तब वे प्रश्न पूछ दिए। तो ब्रजवासियों का स्वतो केसु, अपने अपने बच्चों में गौओं का और माताओं का स्नेह बल्ली, स्नेह की लता अनु अहम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चों में ममता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कितनी बड़ी निःसीम, असीम बढ़ गई। यानी निःसीम का अर्थ है कि ऐसा स्नेह लोक में कहीं नहीं देखा गया। जितना माताओं का अपने बच्चों में स्नेह बढ़ रहा था, ऐसा स्नेह कहीं नहीं है। इसको निःसीम कहते हैं। बढ़ा भी तो हद हो गया, सीमा पार स्नेह बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़े, जहाँ साक्षात भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं और उनको छूने को मिल रहा है, सेवा करने को, चुमने को, सोने को साथ में, क्यों नहीं स्नेह बढ़ेगा। तो समय समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते असीम हो गए। कितना प्रेम बढ़ा, जितना कृष्ण में था, लेकिन अपूर्ववत कृष्ण में जितना था उससे भी अधिक बढ़ा है। इसका भाव यह है, अथवा कृष्ण में जितना था उतना बढ़ा है। कृष्ण में तो रहेगा ही, क्योंकि कृष्ण तो सर्वांशी हैं, अवतारी हैं। तो कृष्ण में जितना प्रेम था उतना बढ़ा। तो अपने बच्चों में जैसा जैसा प्रेम बढ़ता जाता था, उसी मात्रा में कृष्ण में भी बढ़ रहा था। कृष्ण में भी बढ़ा अपूर्ववत, कृष्ण में भी वैसा प्रेम पहले नहीं था जितना अब बढ़ रहा है। तो इस तरह प्रेम बढ़ता जा रहा है। इत्थम आत्मात्मन आत्मानम वत्स पाल मिषेण सह पालयन वत्स को वर्षम चीक्रीड़े बन गोष्ठय। इस प्रकार अपने से अपने को चराते हुए, अपने आप लीला करते हुए और वत्स पालन के बहाने भगवान वन में और गोष्ठ में, वन में और ब्रज में लीला विहार करते रहे 1 वर्ष तक। इस तरह 1 वर्ष तक भगवान विहार किए। एक बार की बात है, किस तरह से स्नेह बढ़ा था गोपों का, गोपियों का और गौओं का, इसका वर्णन एक घटना से सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एक बार की बात है, गौएं गोवर्धन पर्वत पर चर रही थी। एकदा चारयन् वत्सांस रामो वनमाविशत् पञ्चसासु त्रिजामासु हायना पूरणिस्वजः। एक बार अजह श्री कृष्ण बछड़ा चरा रहे थे और साल बीतने में 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी। हायन अपूरणिसु, वर्ष बीतने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी। ये 5-6 रात्रियां ही हायन को अभी पूरा नहीं कर रही थी, मतलब इतनी बाकी, 5-6 दिन बाकी रह गया था। तो उस समय श्री कृष्ण बछड़ा चरा रहे थे श्री बलराम जी के साथ, और जो स्वयं बने हुए थे वहां, और गोप की चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई था नहीं वहां। मतलब कृष्ण हजारों हजारों गोप के रूप में थे, ये भाव है। तो बछड़े को चरा रहे थे, श्री बलराम जी भी थे और गौएं गोवर्धन पर्वत के शिखर पर चर रही थी। ततो विदुरा चरतो गावो वत्सानुपब्रजम गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्तो ददृशोस्त्रिणम। तृणम चरंते गाव गौओं ने देखा बच्चों को बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के शिखर से, और बछड़े क्या किए बच्चे क्या किए थे, सब बच्चे तो कृष्ण थे, तो वे बछड़ों को चराते चराते गोवर्धन के थोड़ा निकट ले गए थे, तो गौओं ने देख लिया अपने बच्चों को। तो ऐसे तो स्वाभाविक ही गौओं का प्रेम होता है, अपने बच्चों से देखती हैं तो दूध पिलाने के लिए दौड़ती हैं। लेकिन इस समय जो बच्चे थे वे सब श्री कृष्ण थे बछड़े, और गौओं ने देखा तो देखते ही गोवर्धन पर्वत से दौड़ पड़ी और हार गए गोप लोग उन्हें रोकते, लेकिन वे रुकी नहीं और आ करके बछड़ों को दूध पिलाने लगे। इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो गोवर्धनाद्रि शिरसि, गोवर्धन पर्वत के शिखर से उन गौओं ने देखा अपने बच्चों को। दृष्ट्वाथ तत्स्नेह बसो स्मृतात्मा स गो ब्रजोत्यात्म पदुर्ग मार्ग द्विपाद ककुद ग्रीव उदास्य पुच्छो अगाधुं कृतैराश्रुपया जवेन। अपने अपने बच्चों को देखते ही वे गौए गो ब्रज गो समुदाय, इससे तात्पर्य वृषभ आदि से भी है, जो भी थे गौओं के झुंड में, तो उन लोगों ने उन गौओं ने देखा अपने अपने बच्चों को, तत् स्नेह बसा अपने बछड़ों के स्नेह के बस में रहती थी, और उनको देखते ही वे अपने आप को भूल गई, चरना भूल गई, अपने देह की भी शुद्धि भूल गई और तुरंत चल दी दौड़ पड़ी। तो गोप उन्हें रोकने का प्रयास किए, वे समझ गए कि ये बछड़ों को दूध पिलाने जा रही है, तो उनको तो दूध दुहना था, शाम को ले चलेंगे घर तो गौओं को दुहेंगे करेंगे, लेकिन बछड़ों के पास जाएंगे तो इनका दूध समाप्त हो जाएगा, बछड़े पी जाएंगे, तो लोग रोकने लगे। वो दंड अपना लाठी चलाए आगे रोकने के लिए, लेकिन कुछ भी हो अति आत्मप अपने पालने वाले को अतिक्रांत कर गई। आत्मप और दुर्ग मार्ग, जितना भी कठिन मार्ग था गोवर्धन में और नीचे वन में भी, उसको भी पार करती हुई, और अपने पालने वाले गोपों को तो पार कर ही चुकी थी गौए, उनके रोकने से रुकी नहीं। द्विपाद, ऐसा लगता था कि दो पैर से दौड़ रही है, जब पशु बहुत वेग से दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दो ही पैर से दौड़ रहे। उदास से पूछ ऊपर करके ककुद ग्रीवा, और अपने मुख को ककुद के पास करके ऊंचा सिर करके और दौड़ रही थी बहुत वेग से। आप समझ सकते हैं कि गौएं कितनी वेग से दौड़ी होंगी, जबकि वे ऊपर से नीचे आ रही थी बड़े वेग से, और उन्हें ये सुधी नहीं थी कि पैर कहाँ पड़ रहा है, कहीं खाई में गिरेंगी क्या होंगी, कुछ भी स्मरण नहीं था, केवल बच्चों के स्नेह में वो दौड़ रही थी। ये है जीव का संबंध भगवान कृष्ण से, वो डायरेक्ट सभी बच्चे भगवान थे बछड़े, इसलिए उनका प्रेम इस तरह से उमड़ गया, और वे दौड़ी देखते ही अगाध हुंकृत राष्ट्र रूपया जवे न, हुंकार करते हुए बच्चों को बुलाते हुए बाएं बाएं करते हुए सब चली आई। समेत गावो धुवत्सान वत्सवत्यो पिपायन, उस समय कुछ गौवें वत्सवती हो गई थी, उनके नए बछड़े हो गए थे, लेकिन उनके प्रति उतने में आकृष्ट नहीं थी जो घर पर बंधे थे, अभी इधर आए नहीं थे चरने के लिए, तो वत्सवती थी, लेकिन अपने पुराने बछड़े को ही दूध पिलाने के लिए इतना वेग से दौड़ी। समेत गावो धुवत्सान वत्सवत्यो अपि, जिनके बछड़े नए हो गए थे वे भी, और जो जिनके एक ही बछड़े थे वो तो और भी दौड़े। गिलंत बच्चांगानी लिहंत सौध संपया, वे आ करके ऐसे बच्चों को चाट रही थी लगता है कि वे उनको निगल जाएंगे, ऐसा प्रेम उमड़ रहा था, बच्चों को चाट रही थी और अपना दूध पिलाने लगी। गोप लोग बहुत क्रोध में हुए गौओं की इस मतलब अनियमितता को देखकर, वे इतना वेग से स्नेह से चली थी कि गोप रोकते रह गए, वे रुकी नहीं, तो अपने रोधन आयास की मौघ्य से व्यर्थता से वे लज्जा और क्रोध में हो गए, रोक रहे थे गौए नहीं रुकी तो उनका प्रयास मोघ हो गया, तो अपने प्रयास के मौघ्य से निष्फलता से उन्हें बड़ी लज्जा आई, और गौओं पर बहुत क्रोध आया, तो वे पीछे से चले जोर से, वे भी दौड़े कि इनको दूध पिलाने नहीं देंगे, देंगे हम लोग। तो अब तक गौएं जो इतना अनुशासन में रहती थी और सदा वे जब हांक करके घर लाते थे तो आती थी, और आज गोपों के अनुशासन से बाहर होकर के और दौड़ करके आई। इसमें बहुत ही सुंदर सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि वास्तव में जीव का भगवान से संबंध है, और यदि कृष्ण का साक्षात्कार ठीक से जीव कर ले तो कोई भी संसार बंधन उसे रोक नहीं पाएगा, गौ को रोक नहीं पाएगा। यदि इंद्रियों का संबंध भगवान से हो जाए तो एक दिन कोई रोके तब भी नहीं रुकती भगवान में लग जाने पर। यहाँ तो साक्षात गौएं हैं और बच्चे हैं भगवान, तो वे आए, उनको रुकने का प्रयास किए, नहीं रुकी, तो वे भी बेचारे दुर्गा कृष्ण तो वे भी दौड़े दौड़े आए इनको रोकने के लिए कि बछड़े को पिलाने न पावे, और बहुत क्रोध में थे कि पहुंचते ही कुछ दंड देंगे, कुछ क्रोध में थे। और बच्चों पर भी क्रोध में थे कि वे इधर क्यों बछड़ों को हांक लाए, क्या चराने के लिए और जगह नहीं थी, इधर क्यों लाए। बच्चों को भी सोचते थे डांटेंगे या एक थप्पड़ मारेंगे, ये इधर क्यों लाए, और गौओं पर भी क्रोधित थे। लेकिन वहां जाने के बाद क्या दशा उनकी हुई उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जब ही उन गोपों ने अपने बच्चों को देखा तो जा जा करके अपने दोनों हाथों से उठा करके उन्हें गोद में रख के और अनुराग से आंसू चूने लगे, तो बहुत देर तक उनको गोद में लिए रहे, और उधर सभी गौएं अपने अपने बच्चों को दूध पिला रहे, आकर के कुछ नहीं किए, गौओं पर भी क्रोध नहीं रहा, बच्चों पर भी क्रोध नहीं रहा। तदी क्षणोत् प्रेम रसा प्लुताशया जाता अनुरागा गतमन्य वर्भकान उद्दुह्य दुर्भिः परिरभ्य मूर्धनी घ्राणे रवापुः परमामुदन्ते। उन बच्चों को देखते ही उनके दर्शन के कारण, उद्गत प्रेम रस के कारण उनका आशय विभोर हो गया, उनके हृदय में एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ उन बच्चों का दर्शन करके, देख करके। जाता अनुराग, प्रेम की पंचम भूमिका उद्भुत हो गई उस समय, अनुराग उत्पन्न हो गया और उनका क्रोध चला गया। गत मन्यवा, और अपनी दोनों बाहों से अपने बच्चे को उठा करके वे शीर सूंघने लगे और प्रेम के आंसू चूने लगे और परमानंद प्राप्त की। तो गौएं अपने बच्चे को पिला रही थी, चाट रही थी, और गोप भी अपने बच्चों को उठाकर गोद में रखे। सुखदेव गोस्वामी को एक अभाव खल रहा था कि माताओं के सौभाग्य का वर्णन किए लेकिन गोपों के, बड़े बूढ़ों के सौभाग्य का वर्णन नहीं किए। तो यह एक दिग्दर्शन करा रहे हैं वास्तव में शाखा चंद्र न्याय, एक हल्का सा दृश्य दे रहे हैं कि गोप भी माँ गोपियों की तरह ही सौभाग्यशाली थे, वे भी बच्चों को घर पर जाते थे तो गोद में रखते थे, उन्हें लालित करते थे। तो आज इतने क्रोध में आए थे कि गौओं को पीटेंगे, ये बच्चों को डांटेंगे, वो आकर के बच्चों को गोद में लेकर के और आनंद के आंसू बहाने लगे। परम सुखी हुए, परमा मुदम थे आप। तत्र प्रवयसो गोपास्तो काश्लेष सुनिर्वृतः कृच्छ्राक्षनैरपगतास्तदनुस्मृत्यु तदनु स्मृति उदस्रव। तो उसमें से सब प्रबयस गोप थे जो गौएं चरा रहे थे, बड़े बूढ़े थे और जिन्हें वास्तव में पर्याप्त ज्ञान था, विवेक था, पर वे भी अपने अपने बच्चों के आलिंगन से परम तृप्त हो गए और बहुत ही कठिनाई से वे बच्चों से अलग हुए। फिर कहे बच्चों को कि ये बछड़ों को ले जाओ दूर, बाकी व्यवहार तो करना था, गौओं को अलग चराना था, बछड़ों को ले जाना था, लेकिन बहुत कठिनाई से वे अलग हुए और निरंतर अपने बच्चे की ही स्मृति हो रही थी, बोलना चलना उसका स्पर्श अनुभव में आ रहा था। और उदस्रव, उत अस्रव, आंसू उमड़ रहे थे, वे गौओं को हाँक कर ला रहे थे, लेकिन आंसू उमड़ रहे थे अपने बच्चों का, अपने अपने बच्चे का स्मरण करके। इस तरह से भगवान समस्त ब्रजवासियों को सुख दिए। यद्यपि वे बच्चे, वे गोप जानते थे कि परिवार में बच्चे में आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन संसार की सारी आसक्ति छोड़ करके मनुष्य या जोगी जो जिनमें आसक्त होना चाहता है वही भगवान पुत्र बनकर आए हैं, तो अब तो पुत्र शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है ना। प्रवैसा शब्द से ध्वनित किया जा रहा है। इस तरह भगवान में आसक्ति बढ़ती जा रही। यह सुख दिया श्री कृष्ण ने ब्रज की माताओं को और गौओं को, गोपों को, सबको। एक वर्ष तक भगवान इस तरह अपने को दिए थे। इसको आत्मद कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बस में पड़कर अपने को दे देते हैं, तो इस तरह से अपने को दिए, सबको सुखी किए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धे दीक्षोत्कण्ठमनोक्षणाम् मुक्तस्तनेषु प्रत्येषु अहेतु विदचिन्तयत्। जब इस प्रकार निरंतर एक वर्ष से ब्रजवासी माताओं का या गोपों का, गौओं का या समस्त ब्रजवासियों का ही अपने अपने पुत्रों में, विशेषकर बछड़ों में और गोपों में, गोप सखाओं में, गोप बालकों में प्रेम बढ़ता जा रहा था, प्रेम की वृद्धि हो रही थी, प्रेमवृद्धि, और उस प्रेम की वृद्धि के कारण औत्कंठ्यम सदा लालसा बनी रहती थी कि कब उन बच्चों से भेंट हो, उनको हम दूध पिलाएं, उनकी सेवा करें। सदा उन बच्चों के प्रति ही चित्तवृत्ति धावित रहती थी। इसको उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठ शब्द से उत्कंठा या औत्कंठ बनता है। उत का अर्थ है ऊपर और कंठ का अर्थ है कंठ। जब किसी की प्रतीक्षा में, किसी से भेंट करने के लिए, कोई चीज पाने के लिए व्यक्ति अपना कंठ ऊपर करके देखता रहता है, तो इसको उत्कंठा कहते हैं। खासकर हमारे देश में जब ट्रेन आने वाली होती है तो प्लेटफार्म पर लोग बहुत उत्कंठ हो जाते हैं, ऊपर कंठ करके देखते रहते हैं। जानते हैं कि गाड़ी आएगी, फिर भी देखते रहते हैं। कई बार तो कुछ रेलवे वाले हटाते हैं कि आप ऐसे क्यों किनारे खड़े हैं, हट जाइए। जो उत्कंठा कहती, बहुत लालसा रहती है कि शीघ्र ट्रेन आवे और हम जाएं। तो उत्कंठा अब बढ़ रही थी ब्रजवासियों की। प्रतिक्षण प्रतिक्षण, आज जितना है उसे कल बढ़ गया, परसों बढ़ गया, वो एक एक मिनट के बाद भी बढ़ता जा रहा, अद्भुत तरह से बढ़ रहा था। यहां तक कि गोदोहन आदि के समय गौएं अपने उन बच्चों को उतना प्रेम से दूध नहीं पिलाती थी जितना बड़े बने हुए बच्चों को, जो बच्चे कृष्ण थे, मुक्त स्तन, उनको बड़े प्रेम से चाटती थी और दूध पिलाती थी, और दिन पर दिन उनकी उत्कंठा बढ़ती जा रही। और इधर भी मुक्त स्तनेषु, जो बच्चे बड़े हो गए थे, अब अपने माँ का स्तन नहीं पीते थे, उन बच्चों के प्रति भी माताओं का प्रेम और बढ़ता जा रहा था। तो प्रतिक्षणम शब्द का अर्थ है निरंतर, इस समय जो समय चल रहा है उससे आगे दो मिनट के बाद ज्यादा बढ़ जाता था, एक घंटे के बाद ज्यादा बढ़ रहा था। प्रतिदिन सारा ब्रज ही उन बच्चों से और बछड़ों से ही प्रेम कर रहा था। कोई काम धंधा करते समय, घर में निवास करते समय, विचार करते समय, सबका चित्त केवल उन बच्चों में लगा रहता था। वे यही सोचते थे कि कब मिलें, कब आलिंगन करें, कब दूध पिलाएं, सेवा करें। तो यह दशा श्री बलराम जी ने देखा, तो इसका भी कारण नहीं जानते थे कि क्या कारण है कि इन बच्चों के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ रहा है। अहेतु विद, हेतु का अर्थ कारण, कारण नहीं जानते थे। क्यों नहीं कारण जानते थे, क्या बात थी कि अब तक के नहीं जाने, यह भी भगवान ने श्री कृष्ण की एक लीला वैचित्री थी कि वे बलराम जी को नहीं जानने दिए। इसके कई कारण हैं। श्री बलराम जी यह जान जाते कि हमारे सखा श्रीदाम मधुमंगल आदि का हरण हुआ है तो ये बहुत दुखी रहते हैं। और दूसरी बात, वो ब्रह्मा को मार भी सकते थे क्रोध में आकर, तो शेष नाग हैं। तो ऐसा काम किया है तो उसको दंड देते, लीला में भंग हो जाता। इसीलिए भगवान ने बलराम जी को जानने ही नहीं दिया। कई तरह की विरसता उत्पन्न होती, डांटते ब्रह्मा को, ये सब क्यों किया, ऐसे क्यों किया, और ब्रह्मा अगर ऐसे नहीं करते तो भगवान इस प्रकार का सुख ब्रजवासियों को कैसे देते। इसलिए श्री बलराम जी नहीं जान सके। चैतन्य चरितामृत में जो लिखा गया है कि अन्य ईश्वरों में जो भगवत्ता देखी जाती है, परम ऐश्वर्य देखा जाता है, वो कृष्ण दत्त भगवत्ता, कृष्ण की दी हुई भगवत्ता है, कृष्ण ही उस रूप में है। तो मूल वास्तव में कृष्ण है, अवतारी है। वे नहीं चाहते हैं कि बलराम जी जाने तो बलराम जी नहीं जान पाए। जबकि ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान श्री कृष्ण के दूसरे एक्सपेंशन वही है, परम ऐश्वर्य से युक्त, सर्व ज्ञान संपन्न, परंतु यह नहीं जान पाए। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, जारे जैसे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य। ये बातें सब सिद्ध हो रही, परम ईश्वर श्री बलराम जी भी नहीं जान पाए। कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। तो चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, कई दिन ये सोचते थे, लेकिन एक दिन उनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई। तो सोचते हैं कि मैं तद अद्भुतम, ये क्या आश्चर्य मैं देख रहा हूं, जैसा ब्रजवासियों का वासुदेव अखिलात्मनि, अखिलात्मा श्री कृष्ण में जितना प्रेम ब्रजवासियों का था वैसा ही प्रेम तो केसु अपि वर्धते, अपने पुत्रों में भी बढ़ रहा है। तो शब्द दिया जा रहा है तो बछड़ों में और बच्चों में बढ़ रहा है प्रेम। अपूर्वम प्रेम वर्धते, ऐसा प्रेम कभी नहीं था उन बच्चों में, वो प्रेम बढ़ रहा है। ये क्या बात है, किसकी माया है, क्या शक्ति है। और सात्मन सयात्मन बलराम जी ने यह भी देखा कि उनका प्रेम भी उन बच्चों के प्रति बढ़ता जा रहा है। कृष्ण में जितना उनका प्रेम था उतना ही प्रेम उन बच्चों में और बछड़ों में बढ़ता जा रहा है, श्री बलराम जी का भी। ब्रजस्य और आत्मन सयात्मन ब्रजस्य, तो एक बहुत बड़ी विचारणीय बात हो गई। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ये माया बढ़ रही थी बच्चों में, बछड़ों में इस तरह की उत्कंठा बढ़ना, ये तो माया है। बलराम जी ये सोच रहे हैं कि मेरा भी प्रेम उन लोगों में ही बढ़ता जा रहा है, जैसा कृष्ण में है वैसा प्रेम उनमें क्यों होता जा रहा है। वास्तविकता ये थी कि वे सब कृष्ण थे, पर श्री बलराम जी नहीं जानते थे, पर प्रेम तो बढ़ रहा था वस्तु सद्गुण से, वस्तु शक्ति से प्रेम बढ़ रहा था बलराम जी का या ब्रजवासियों का। तो ये विचार कर रही क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबका कृष्ण में जितना प्रेम था उतना ही प्रेम बढ़ता जा रहा है, मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है इन लोगों में। कायम कायम, ये कौन सी माया है, कैसी माया है? माया शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि इस तरह से मोह में डालने वाली, भ्रम में डालने वाली आश्चर्यमय शक्ति किसकी है? कौन हमको उन बच्चों का प्रेमी बना रहा है, उन बच्चों का प्रेमी बना रहा है? कौन ऐसा जादू चलाया? तो जादू कोई नहीं चलाया, तुम्हारा भाई चलाया है, पता नहीं है। तो, कौन किया, कुतय आया था? ये कैसी शक्ति है और कहाँ से आई है, कौन इसका प्रवर्तक है, कौन चला रहा है? इस तरह से मन में संसारिक लोगों के प्रति प्रेम और इतना आकर्षण जितना भगवान में हो, ये सोचनीय बात है ब्रजवासियों के लिए या श्री बलराम जी के लिए। क्या ये दैवी माया है, किसी देवता की है? ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता हैं, क्या उनकी कोई शक्ति विशेष है, उनकी शक्ति है? या नारी माया है, नारी का अर्थ नर की, नर की माया? क्या मनुष्यों की ये कोई माया है, किसी मनुष्य ने ये सब किया है? अथवा आसुरी, किसी असुर की ये माया तो नहीं है? प्रायो मायास्तमे भर्तो नान्यमेपि विमोहिनी, ब्रजवासियों को मोह में डाल सकती है दूसरे की माया, लेकिन मेपि विमोहिनी, मुझे भी इस तरह का भ्रम में डाल रही है और मेरा भी इन बच्चों के प्रति और बच्चों के प्रति इतना स्नेह बढ़ रहा है, निश्चित है इसमें मेरे स्वामी श्री कृष्ण की ही माया हो सकती है, क्योंकि मुझको अन्यों की माया मोहित नहीं कर सकती। या माया का अर्थ है, ये सांसारिक माया नहीं समझना चाहिए, एक आश्चर्यमय शक्ति, यह श्री कृष्ण की ही कोई विशेषता है जो मेरा प्रेम भी इन बच्चों में और बच्चों में बढ़ रहा है, स्नेह बढ़ रहा है। दूसरे की माया मैं विमोहिनी न, मुझको मोह में नहीं डाल सकती। ये बड़े भाई हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भरता भरतु पर है, श्री कृष्ण हमारे भरतु भरण करने वाले। तो श्री बलराम जी ठीक निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि यह कोई श्री कृष्ण की ही शक्ति है, कोई उनकी इच्छा है, कोई उनका उनकी योजना है, तब मेरे मन में इतना प्रेम बढ़ रहा है इन बच्चों के प्रति। पहले भी श्री बलराम जी का प्रेम था सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल आदि के प्रति, लेकिन आज वे नहीं है, श्री कृष्ण ही उन सब के रूप में बन गए हैं। तो जितना कृष्ण से प्रेम था उतना प्रेम उनसे उनका बढ़ गया। तो ये विचार कर रहे हैं, इति संचिंत दासर हो वत्सान सवयसान पी सर्वाना चष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुने न सह। बलराम जी पड़ गए कारण जानने पर, क्या कारण है कि मेरा मन इन बच्चों से प्रेम कर रहा है, स्नेह बढ़ता जा रहा है? तो वयुनेन चक्षुषा, वयुन का अर्थ ज्ञान, ज्ञान दृष्टि से वे विचार करने लगे, चूंकि सर्वज्ञ ईश्वर हैं, तो अरे पहले ध्यान नहीं दे रहे थे यही भर बात, अब उन्होंने ध्यान दिया तो तुरंत समझ गए। ये सब बच्चे उन्हें वैकुंठ के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। जब थोड़ा सा ध्यान देकर विचारने लगे तो वो देख लिए सर्वान आचष्ट वैकुंठम, सबको वैकुंठ के रूप में देख। वत्सान सब वयसान, अपने मित्रों को और बछड़ों को भी, सबको सर्वान। और यहाँ अपि शब्द चकार के अर्थ में है, केवल बछड़ों को ही नहीं, केवल बच्चों को ही नहीं, बच्चों के जो कपड़े थे, श्रृंगार थे और जो कुछ था वो सब विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में देखा उन्होंने। सर्वम सर्वान, उन्हें दिखाई दे रहे थे, फिर भी उनकी शंका नहीं गई, फिर एक शंका बन गई कि ये सब कृष्ण के रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। इतने समझ, इतनी बात समझ में आ गई कि कृष्ण के रूप में ये हैं, इसलिए मेरा आकर्षण हो रहा है, चाहे ब्रजवासियों का प्रेम इनके प्रति बढ़ रहा है। परंतु कृष्ण इतने कृष्ण क्यों हुए ये बात तो नहीं जान पाए अभी। इतनी संख्या में कृष्ण अपने को क्यों प्रकट किए इस बात को नहीं समझ रहे थे। तो नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासे सभिदाश्रयेति सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वद इत्युक्तेन उक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै। श्री बलराम जी भगवान कृष्ण से पूछने लगे। एक बार दोनों भाई बैठे थे तो उन्होंने अपनी स्थिति बताया कि कृष्ण या हे प्रभु, यहाँ पर ऐश्वर्य की स्फूर्णा हुई है। हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ जितने भी सखा हैं और बछड़े हैं, नैते सुरेशा, ये सुरेश नहीं है, ये देव श्रेष्ठ नहीं है। बलराम जी जानते हैं कि कुछ देवताओं में श्रेष्ठ भक्त जन वे बछड़ा बने हुए हैं, नहीं ऋषि जन बछड़ा बने हुए थे और देवगण गोप सखा बने थे, बहुत से ऐसे। अधिकांश तो भगवान के नित्य प्रिय प्रिय परिकर हैं, लेकिन कुछ देवता और कुछ ऋषि गोप बालक और बछड़ा बने हुए थे। तो बलराम जी देख लिए कि इनमें से कोई भी देवता नहीं है, देव नहीं है और न ऋषि है। कृष्ण से कहने लगे वे, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते, न ये देवता हैं न ऋषि हैं, पहले बछड़े के रूप में और बालक के रूप में जो थे ये कोई नहीं है। त्वमेव भासि ईशा, हे ईश, हे परमेश्वर, आप ही इन सब ग्रुपों में हैं, ये मैं देख लिया। भिदाश्रयेपि, भेदाश्रय के रहने पर भी, अर्थात आप भिन्न रूप में लग रहे हैं, जैसे सुबल मधुमंगल या बछड़े आपसे भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में भी आप ही दिख रहे हैं हमको। यहाँ और कोई नहीं है, कोई देवता या कोई ऋषि नहीं है। सर्वम पृथक्तम, ये सब पृथक पृथक आप ही दिखाई दे रहे हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं है। तो निगमात बद, कथम, क्यों आप इन सब रूपों में हुए हैं, क्यों अपने को गोपत्स और गोपालक के रूप में व्यक्त किए हैं, इसको निगमात बद, निगम का अर्थ है संक्षेप, इसको संक्षेप में कहिए, मुकल संकेत बताइए, क्या आप नाटक कर रहे हैं, ये क्यों अपने को आप इतने हजारों हजार बछड़ों के रूप में और बच्चों के रूप में व्यक्त किए हैं। निगमात बद, संक्षेपत बद, इति उक्तेन, ऐसा कहने पर वृतम प्रभुणा, तो प्रभु ने सर्वसमर्थ श्री कृष्ण ने सारी बात बलराम जी को बता दी। और अब केवल 5-6 रात्रि शेष रह गई थी एक वर्ष पूरा होने में। तो जब श्री बलराम जी को भगवान ने सारी बात बता दी तो बलराम जी भी प्रसन्न हुए, ठीक अच्छा किया ब्रह्मा, या ब्रह्मा को प्रेरित करके आपने ही कराया। बलराम जी बहुत हंस रहे थे, तो शुरू में ही क्यों नहीं बताया हमको, कोई माधुर्य भाव आता है तो पूछते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी प्रसन्नता जिसमें हो। तो सभी ब्रजवासियों को भगवान ने सुख दिया, इसलिए बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। तो बलो अवैत, बल जान गए बलराम जी, अवैत, अवैत का अर्थ जान गए सब कुछ ठीक से भगवान के बताने पर। हरीश्वरी जी कहते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही उपाय है, यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा भाई हूँ और बड़ा व्यक्ति हूँ इसलिए क्यों पूछूं। जब पूरी बात की जानकारी न हो तो नम्र भाव से पूछ लेना ही ठीक होता है। और पूछने में वे ये नहीं कहे कि कृष्ण बताओ, हे प्रभु बताइए ये क्या रहस्य, सारा विष्णु तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है,
और यहीं पर तुलना करते हैं हरिश्वरी जी की, ब्रह्मा जी को भी भ्रम हुआ, आगे चलकर बताया जाएगा, लेकिन वो भगवान से पूछे नहीं। ये छोटा व्यक्ति समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो किसी से न पूछता है न सुनता है। जो बड़े लोग होते हैं वही सुनते हैं और पूछते हैं। तो श्री बलराम जी पूछे, जबकि बड़े भाई हैं, परंतु छोटे भाई से हाथ जोड़कर पूछे कि क्या रहस्य है। ज्ञानी से तो पूछना ही चाहिए, तो पूछे तो जान गए, और ब्रह्मा जी नहीं पूछे तो कई चक्कर में पड़े। पूछे नहीं। यहाँ ये भेद दिखाया गया। बोलो अवैध, बलराम जी जान गए। अच्छा, इनका तो मोह हुआ, उसका निरसन किया भगवान ने। और मोह क्या था बलराम जी का? उन बच्चों में स्नेह बढ़ रहा था, यही मोह था। तो कृष्ण में ही बढ़ रहा था वास्तव में, ये मोह नहीं था। जैसे सूर्य मंडल के भीतर अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे श्री बलराम जी में अज्ञान संभव ही नहीं, कृष्ण को छोड़ करके और में उनका स्नेह बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर कृष्ण ही अपने को कई रूप में किए थे, तो क्यों नहीं स्नेह बढ़ेगा? इसके द्वारा भगवान के स्वरूप की प्रियता व्यक्त होती है। भगवान है, आनंद स्वरूप हैं और प्रिय स्वरूप हैं। इस संसार में अनादि काल से जीव है, दो बात की खोज करता रहता है, एक तो प्रिय की खोज कर रहा है और दूसरा आनंद की खोज कर रहा है। सभी जीव आनंद चाहते हैं और किसी न किसी को प्रिय बनाते हैं संसार में, वो चाहते हैं कि हमारा कोई प्रेमी है। क्यों? कि जीव का परम प्रियतम कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, अतः वह प्रकारांतर से कृष्ण को ही अन्वेषण कर रहा है, उनको ही जोह रहा है किसी भी शरीर में। और वास्तव में यदि वह जीव से प्रेम करता है तो वह भी कृष्ण से ही प्रेम हुआ इनडायरेक्ट। कैसे? कि जीव भी कृष्ण का ही अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। जिस दिन वो जीव निकल जाता है शरीर से, तो फिर शरीर से हम प्रेम नहीं करते, उसे ले जाकर जमीन में डाल देते हैं या चिता पर जला देते हैं, है ना। जब ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, वो चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन उस शरीर को हम नहीं रखता, वो शरीर प्रिय नहीं रह जाता है। तो शरीर में रह करके प्रिय कौन लग रहा था? आत्मा। और आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान कितना प्रिय होंगे जीव के। और मूर्तिमान शरीर से भिन्न, शरीर से अलग, मतलब सच्चिदानंद विग्रह में पूर्ण अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जब भगवान होते हैं, तो भी कितना प्रिय होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। जब उनका एक बहुत ही बारीक अंश, नगण्य अंश इस शरीर में आकर के इस प्रकार की प्रियता का भाव पैदा करता है, तो वही भगवान जब मूर्तिमान आ जाए तो कितना प्रेम होगा। तो वे ही बछड़े के रूप में हो गए थे, चाहे बच्चों के रूप में हो गए थे, इसीलिए सारा ब्रज उनसे प्रेम बढ़ा रहा था। तो बलराम जी का आचरण ही इसमें प्रमाण है, इस तरह से प्रेम बढ़ रहा था। भगवान परम आत्मा है, परम सुहृद है। तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक जीव प्रिय को खोज रहा है, और दूसरी बात यह है कि वह सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो श्री कृष्ण घनीभूत आनंद है, आनंद ही आनंद है भगवान में, और कुछ नहीं है। तो प्रकारांतर से जीव है आनंद घन श्री कृष्ण को ही चाह रहा है, परंतु मूर्खता बस चाह रहा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ भगवान नहीं है। तो इस प्रसंग से, अर्थात ब्रजवासियों का अपने बच्चों से प्रेम और श्री बलराम जी का उनसे प्रेम, इस बात को सिद्ध करता है भगवान की आनंद घनता, सुख स्वरूपत्व और परमात्मत्व, ये सब व्यक्त हो रहा है। तो अब ब्रह्मा जी के मोह की बात कह रहे हैं। तावत
तावदेत्यात्म भूरात्म मानेन तृट्यनेहसाम पुरोवदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिं।
इधर ब्रज में एक वर्ष बीता तो ब्रह्मा जी का समय कितना बीता अपने मान से आत्म माने न अपने नाप से आत्म भू का भगवत पुत्र ब्रह्मा जी का कितना समय बीता त्रुटि अनेहस त्रुटि काले न। त्रुटि का अर्थ है एक कमल के पत्ते में एक बारीक सुई से छेद करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगा ब्रह्मा जी अपने मान से। हम लोगों का जो यहाँ पर कमल का पत्ता हम लोग छेदेंगे तो यहाँ जैसा अगर माप ब्रह्मा जी को दिया जाए कि आप कमल का पत्ता छेदिए तो उसमें एक साल लगेगा, मतलब हम लोगों का एक साल होगा। इसको त्रुटि कहते हैं। तीन त्रुटि का एक पल होता है। कमल का पत्ता छेदने में क्या देर लगेगी, केवल छेदने में हाथ हटाने में देर लगेगा लेकिन छेदने में कोई देर नहीं लगेगा। तो त्रुटि का तो त्रुटि भर इसका अर्थ यह है, यह एक उपलक्षण है कि बहुत थोड़ा समय लगा, बहुत थोड़ा ब्रह्मा जी के मान से। पूर्वदाब्दम कृणंतम ददृश्य सकलम हरि, तो ब्रह्मा जी उधर बछड़ा चुरा कर ले गए और बच्चों को तो सुला करके रखे, अपनी माया से सुला दिए। भगवान माया वह थी, अब इन बातों को कहने में देर लगेगी किस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण की माया काम कर रही थी, योग माया। और ब्रह्मा जी उनको ऐसा करके और इधर देखने आए कि कृष्ण और क्या मंजू महिमा दिखा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वही सब बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे, बछड़े भी चर रहे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। और उन्होंने देखा तो उन्हें तो साल भर नहीं लगा, ब्रह्मा जी को ये एक वर्ष नहीं लगा, इधर एक वर्ष तक को लीला चली थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि पूर्ववत पूर्व जैसे श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर के जाते थे, गोपों के साथ खेलते थे, वैसे ब्रह्मा जी ने देखा सबको, एक भी कम नहीं था उसमें, एक भी कम बछड़ा नहीं था, न गोप सखा कोई घटा था, न उनका आकार प्रकार सब कुछ परिपूर्ण था। और कृष्ण को देखा कि वे बछड़ों के साथ और गोपों के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जावंतो गोकुले बाला सवत्सा सर्वे वही, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं कृष्ण सब बच्चों को और बछड़ों को उठा करके तो नहीं लाए हैं, तो वे जाकर उधर देख करके फिर आए। तो कहते जितने भी गोकुल में बछड़े हैं और बच्चे हैं सभी तो माया सय सयाना में मेरी माया की सज्जा पर सो रहे, नद्यपि पुनरुत्थिता अभी वे उठे नहीं हैं, सब माया तल्प पर सो रहे। तो इत एतेत्र कुत्रत्या, तो इत यहाँ पर वृंदावने, इत अत्र कुत्रत्या, ये सब बच्चे और ये बछड़े कहाँ से आ गए। वो बच्चे और बछड़े तो सब सो रहे हैं, ये कहाँ से आ गए। मन माया मोहिते तरह, मेरी माया से जो बछड़े मोहित हैं और बच्चे मोहित हैं उनसे भिन्न ये सब कहाँ से आ गए। गिनने लगे ब्रह्मा जी, बहुत बड़े विद्वान हैं, वहां जितना सुलाए थे ले गए थे तो उतना ही गिन गिन करके देखे तो बिल्कुल वही है, रूप आयादि भी वही है। तावंत एवं तत्रादम क्रीडंतो विष्णुना समम, उन्होंने देखा कि सभी बच्चे और बछड़े विष्णुना समम श्री कृष्ण के साथ खेल रहे। तो इन दोनों में भेद का वो ध्यान करने लगे, क्या अंतर है कि वही बछड़े आया करके तीव्र विद्युत गति से वहां चले जाते हैं और सो जाते हैं और फिर आकर खेलते हैं। नहीं, वे समझ गए कि नहीं नहीं वे बच्चे नहीं हैं, वे बछड़े और बच्चे तो मेरी माया से सो रहे हैं,
एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सयात्मभू, यद्यपि आत्मभू हैं, आत्मा का अर्थ है भगवान और भू का अर्थ है जन्म, भगवान से डायरेक्ट जन्म हुआ है इनका। इतना महान होते हुए भी ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। अब विचार करते हैं कि रियल कौन है। मैं तो बिल्कुल ओरिजिनल सब कुछ चुरा करके वहां रखा हूं और ये भी बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, तो सत्य के कतरे नेति, कौन सत्य है और कौन सत्य नहीं है, इति ज्ञातुम नेष्टम कथंचन। कितना भी जोर लगाए, दिमाग को एकाग्र किए, लेकिन कथंचन किसी भी प्रकार से ज्ञातुम न इष्ट, जानने में समर्थ नहीं हो सकते। अब तो मंजू महिमा देखने चले थे, अब इनका धक धक कलेजा करने लगा कि मैंने तो भगवान का बहुत अपराध किया। यदि अभी यही मंजू महिमा वो देख रहे हैं, बहुत सुंदर महिमा देख रहे हैं, लेकिन अब वो फेर में पड़े कि ये सच्चा कौन है, नकली कौन है। और यदि मैं भगवान को लौटाऊंगा अभी बछड़ा और बालक तो क्या कह करके, वो तो ऑलरेडी है, वो बड़े चक्कर में पड़े। चिरम ध्यात्वा, बहुत काल तक विचार किए, जुक्ति से सोचे क्या है, लेकिन वो पूरा दो सेट देख रहे थे एकदम एक समान। एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायाजोपि स्वयमेव विमोहितः। कौन सत्य है कौन असत्य है, अब इस परीक्षा में अपनी ही माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान को क्या मोहेंगे। यहाँ भगवान कृष्ण को विष्णु और विमोहम विश्वमोहनम कहा गया। विमोहम का अर्थ है विगत मोह, तम विमोह, जिनमें मोह नहीं है, भगवान में भ्रम है ही नहीं बिल्कुल। जैसे सूर्य के पास कोई अंधकार नहीं है, रात्रि का कोई प्रश्न नहीं है, वैसे ही भगवान में कोई भ्रम नहीं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। परंतु विश्व मोहनम, संपूर्ण विश्व को भ्रम में डाल सकते, डाले हुए हैं, डाल सकते क्या, सारा विश्व भ्रम में है भगवान की माया से, पर वे किसी के माया के चक्कर में नहीं आ सकते। विमोहम विश्व मोहनम, स्वयं विगत मोह है और विश्व को मोह में डालने में समर्थ है। तो ऐसे विष्णु को, श्री कृष्ण को सम्मोह यानी मोह मोह में डालने, भ्रम में डालने चले थे, तो डाल ही दिए थे। भगवान जब बछड़ा खोज रहे थे तो भ्रम में ही पड़े थे, और क्या। ये ब्रह्मा जी तो सोचे कि देखे कैसे रोते हैं, खोजते हैं, यही वो देखना चाहते थे, लेकिन वो स्वयं बना लिए रोए गाये नहीं। और ब्रह्मा जी यदि वास्तव में इधर देखने नहीं आए होते, स्तुति करने नहीं आए होते, तो भगवान अब अनंत काल के लिए अब वैसे ही रहते, बछड़ा और गोप सखा बन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो अब घबरा गए, स्वयं माया अज स्वयमेव विमोहित, ये भी अज है, अजन्मा है ब्रह्मा जी, प्राकृत जन्म नहीं है, लेकिन भगवान की माया से स्वयं ही मोहित, अपनी माया से ही, अपने करने से ही स्वयं मोहित हो गए। अब चक्कर में पड़ गए कि हाय रे मैं ये किया क्यों, अब क्या करूं। यहाँ कृष्ण को विष्णु कहा गया है इसलिए कि वे अपने को व्यक्त कर चुके हैं बहुत रूप में, व्याप्तत्वात् विष्णु, यहाँ सब भगवान का यह नाम सही हो रहा है, सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं गोप सखा और वत्सों के रूप में। तो अपनी माया से स्वयं ही मोहित हो गए ब्रह्मा जी। तो दो दृष्टांत देते हैं सुखदेव गोस्वामी की, किस तरह ब्रह्मा जी की शक्ति भगवान पर काम नहीं की। तम्याम तमोवन नैहारम, जैसे नैहारम तमह निहार से उत्पन्न तम, आप लोगों ने देखा होगा दिन में कुहरा पड़ता है तो अंधकार कुछ कुछ बन जाता है, बनता है ना, तो उसको नैहारम तमह कहते हैं। तो इस तरह से रात्रि में भी कुहरा छाता है, कभी कभी दिन में छाता है, तो तमी कहते हैं जिसमें तम भरा हो, केवल अंधकार भरा हो, घनीभूत रात्रि अंधकारमय रजनी, तो अंधकार से पूर्ण रात्रि है तो उसमें निहार से उत्पन्न अंधकार क्या प्रभाव डालेगा, उसको और क्या अंधकार बनाएगा, उसके अंधकार की वृद्धि नहीं कर सकता या उसके अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता। तो जैसे कुहासा से बना हुआ अंधकार अंधकारमय रजनी पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है, बल्कि उस अंधकारमय रजनी में पता भी नहीं चलेगा कि निहार है या नहीं। वो तो जब चंद्रमा उगता है तब रात में पता चलता है कि कुहासा पड़ रहा है, नहीं तो घनी रात हो तो ये भी नहीं पता चलता है कुहरा पड़ रहा है क्या हो। जब हाथ ही नहीं दिखता है अपना अंधकार में तो कुहरा क्या दिखाई देगा, और कुहरा से बनाई हुई कुहरा से बनाया हुआ तमह क्या काम करेगा। एक तो ये उदाहरण दे रहा।